ध्यान मत लेना।
सजीव भक्तों का विनोदन करने के लिए है। कश्यप और अदिति ने कठोर तपस्या की, नारायण की शत्रुज के रूप में उन्होंने दर्शन दिए, कहा क्या चाहिए, आप ही जैसा पुत्र हो। बोले हमारा जैसा, हमारे जैसा तो कोई है नहीं, किंतु हमको तो आप ही जैसा पुत्र चाहिए, तो ठीक है तो मुझे ही आना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण उनके पुत्र के रूप में आए। और उधर में द्रोण और धरा, द्रोण माने पर्वत, धरा माने पृथ्वी, ये रूप धारण कर और तपस्या की, किसकी, ब्रह्मा जी की, इसलिए पूर्व कल्प में द्रोण ने माने पर्वत ने दर्शन किया था कृष्ण की लीलाओं का, क्योंकि जितने उस समय द्रोण माने पर्वत हैं गिरिराज जी को आश्रय करके रहते हैं, इसलिए कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन किया। और धारा पृथ्वी के ऊपर में हुआ, ब्रजभूमि का आश्रय किया पृथ्वी ने और उनकी लीलाओं का आस्वादन किया, थोड़ा सा दर्शन किया दूर से, उनकी लालसा हुई वात्सल्य प्रेम हमको हो, यशोदा जी जैसा हमको प्रेम होता, नंद बाबा जैसा हमको प्रेम होता, कहा किसके सामने कृष्ण से मांगने से नहीं होगा। इसलिए उनके परम प्रिय भक्त ब्रह्मा जी से वर मांगा कि कृष्ण के प्रति हमारा वात्सल्य भाव हो, प्रेम हो, पुत्र जैसा प्रेम। उन्होंने प्रेम नहीं मांगा, ये दो, ये पशुदेव और देवकी के रूप में आए कश्यप अदिति, और द्रोण धरा आए, द्रोण और धरा के रूप में ही आकर और यशोदा और नंद बाबा में द मिक्स टीम, यशोदा एंड नंद बाबा उनमें मिलकर के रस का आस्वादन किया। जब लीला समाप्त होगी प्रकट, तो वो अलग से होकर के रूप धारण करके ब्रज में उनके अनुगत्य में उनकी सेवा उन्होंने की। यदि उन लीलाओं को सुन करके, कृष्ण की लीलाओं को सुन करके, वैसे ही हम लोगों को भी लालसा हो जगे, जब हम गोपियों को कृष्ण जैसे मिले, गोपियों के जो बल्लभ है उनके चरणों में हमारी वैसे ही प्रीति हो, तो हम लोग भी वैसा साधन भजन कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो उन भक्तों के लिए आए। तीसरी बात, उतना पूर्व जन्म में इनकी बेटी थी, बलि महाराज की बेटी थी, बाण महाराज का रूप देख करके बड़ी प्रसन्न हुई कि जी ऐसा ही पुत्र हमको। तो बामन जी ने कहा ठीक है ओ मस्तु ऐसा ही होगा, किंतु जब उन्होंने विराट रूप धारण करके और पृथ्वी को तीन डगों में माप लिया और बलि को बांध दिया कि जी ऐसा बेटा तो हो, किंतु मैं उसको 20 मुख में देकर के उसे मार डालू, अजय ऐसा ही होगा, तू 20 देगी तुम खुद मरेगी तू। इसलिए उसकी इस वासना को पूर्ण करने के लिए, तीसरी बात, नारद इत्यादि भक्तों की बात को रक्षा करने के लिए, किस बात की रक्षा करने के लिए, अरे नलकुबर को अभी संपात कर दिया, नलकुबर जब गिड़गिड़ाने लगा उस समय में नारद जी ने कहा जाओ ब्रज में तुम वृक्ष होकर के जन्म लेगा, और उस समय तुम्हारा उद्धार करने के लिए वही नंद नंदन जी आकर के तुम्हारा बीच में ओखल को लगा देंगे और तुम्हारा, तुमको स्पर्श नहीं करेंगे, ओखल से तुम्हारा स्पर्श होगा, इस तरह से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, उनके लीला परिकर बन जाओगे। तो इसलिए क्या हुआ, अपने भक्तों की बात रखा और अपने भक्त पर अनुग्रह करने के लिए, भक्त कौन है, जय विजय, ये तीसरे जन्म में उसको लाना है, तीन जन्मों के लिए अभिशाप हुआ इसको, उसको लौटाने के लिए सब स्वयं भगवान ही कृष्ण चंद्र जी आए और उन पर अनुग्रह किया। ये विजय विजय कौन था, शिशुपाल दंत पक्र, उनका उद्धार करके ले जाना, ये भी एक अपने भक्ति की रक्षा, बात की रक्षा। सनक सनातन उनके भक्त हैं, सनक सनातन सनातन सनत कुमार उनके भक्त हैं ना, उन्होंने जय विजय को संपाद दिया केवल तीन जन्म के लिए, उनकी बात की सत्यता के लिए। और अभासु बकासु इत्यादि पूर्व जन्मों में असुर थे, उन लोगों ने भक्तों के चरण में अभी कुछ दोष किए, उन लोगों ने अभिशंपात किया, जाओ कृष्ण जन्म में तुम्हारा उद्धार, इसलिए उनको रक्षा करने के लिए आए। विशेष करके श्रुतियां और दंडकारण्य के ऋषि लोग बहुत काल तक तपस्या कर रहे हैं, लाखों लाखों वर्षों तक गोपी भाव से कृष्ण का भजन कर सके उसकी सिद्धि के लिए, इसलिए उनको देना जरूरी था यह भाव। इसलिए प्रकट पृथ्वी में ही उनको जन्म होगा गोपी के रूप में, और उन पर कृपा करेंगे तब वो नित्य लीला में प्रवेश कर सकेंगे, इसके लिए भी उनको आना है। जनकपुर की राजकन्याएं उनको भी गोपी भाव देना है, क्योंकि रामचंद्र जी उनको वरदान दे रखा है, इसलिए उनको भी देने के लिए इस जन्म में आना है। स्वर्ण सीताएं वो प्रकट होकर के बोली, हम क्या करेंगी, अब तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, हम तो जीवित हो गई हैं। अच्छा, राम बोले जैसे कृष्ण लीला में मैं करूंगा, जैसे कृष्ण लीला में ये सब गोपी होकर के आई, ऐसी गोपियों को कात्यायनी का व्रत करना पड़ा और उनको कृष्ण ने उनके कपड़े चुरा करके उनको वो वरदान को पूरा किया। शूर्पणखा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए राम का रूप देख करके आकर्षित हो गई थी, वही कुब्जा होकर के आई उसको ये देने के लिए। और विशेष क्या, ये सब लाभ कितना गिनाया जाए, विशेष करके एक मूल कारण वह ब्रज का प्रेम जो उस कल्प के पहले नहीं दिया गया था, इस ब्रज में प्रकट करने के लिए, इसलिए वो जगत में प्रकट हुए। ये नर जी की इच्छा जो व्यास जी को उन्होंने दी थी, वो सब लीलाओं का आस्वादन वहां पर नित्य कर रहे हैं, किंतु इस जगत के लोगों को उसकी लीलाओं का कोई भी पता नहीं, इसलिए उन लीलाओं का लोभ लोगों में हो उत्पन्न हो, इसलिए उस प्रेम को आस्वादन करने के लिए वो ब्रजंत नंदन श्याम सुंदर नित्य सच्चिदानंद विग्रह इस प्रकट उनका रसास्वादन करने के लिए, और उसके माध्यम से लताओं को गुल्मों को भी प्रेम प्रदान करेंगे। कृष्ण का अतिरिक्त यह प्रेम किसी ने प्रदान नहीं किया, विशेष करके पारकीय भाव को जगत में प्रचार करने के लिए। गोपियां हमारी पारकीय नहीं होने पर भी, स्वकीय होने पर भी इस परकीय भाव को प्रकट करना है, परकीय रूप को नहीं, पारकीय भाव को। गोपियां उनकी अपनी स्वरूप शक्ति हैं, किंतु उनका भाव जो मैं हमारे पति दूसरे हैं, ये जोग माया के द्वारा बनाया गया इस लीला में या वहां पर नित्य भी है, उस चीज को यहाँ पर प्रकट रूप में दिखलाने के लिए इस नाना प्रकार से कारणों से इस जगत में कृष्ण इस भूतल पर अवतरित हुए। अवतरित होकर के क्या किया, विशेष करके एक और चीज, नारद जी ने व्यास जी का जो खेद था उसको दूर किया, वेद उपनिषद शास्त्र सब बना करके महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, वेदों के चार विभाग किए, सब कुछ ठीक किया, यहाँ तक वेदांत सूत्र भी लिखा, सब कुछ लिखा, चित्त प्रसन्न नहीं खेद युक्त। उस समय में नारद जी कहा जी तुम्हारा चित्त प्रसन्न क्यों नहीं, तो हमें नहीं पता, तो तुमने तो सब कुछ कर डाला, तो हमने सब कुछ किया है, जगत के लोग उनको गुरु मानते हैं, अभी कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा मनाई गई, किंतु चिंत किस लिए खे, कृष्ण की सर्वोच्च लीलाओं का वर्णन नहीं किया, कृष्ण के सर्वोच्च भक्तों का जो प्रेम है उसको वर्णन नहीं किया। अपश्यत पुर संपूर्ण मायांच जदा पार्श्वयां, अपश्यत पूर्ण में वो रूप क्या है, इस रूप यह कब की बात है, उस समय कृष्ण का आविर्भाव हुआ था कि नहीं, ये जो बातें हुई ब्रह्मा इनमें व्यास और नारद जी के, ये कब की बात है, कृष्ण के जन्म से पूर्व ना पाए पीछे, बहुत पूर्व की बात, व्यास जी कब के हैं, कृष्ण के तीन चार पुरुष आगे हैं, ये बहुत ऊपर, व्यास जी सत्यात्य के लड़के हैं, भीष्म पितामह जी व्यास के बड़े भाई हैं, है ना, भीष्म पिता भी बड़े भैया हैं। इसके बाद में व्यास जी आए, व्यास जी से विचित्र वीर्य और चित्रांगद दोनों उनके भैया हैं, माने सत्यवती के लड़के हैं, और ये उनके बहुत पहले के लड़के हैं सत्यवती से, किंतु पराशर ऋषि से व्यास जी हैं, एक तरह से भाई ही हुए। अब उनको लड़का नहीं, अपनी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से उनको लड़का पैदा हुआ। कौन हुआ? पांडु और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधे, पांडु, पांडु के पुत्र हुए अर्जुन, अर्जुन के सखा ये कृष्ण भैया एक उम्र के, युधिष्ठिर बल्कि बड़े हैं। युधिष्ठिर के बाद में कौन हुआ? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ये श्रीमद भागवत सुना रहे हैं किसको? परीक्षित महाराज सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। अब अपरीक्षित से लेकर के कृष्ण व्यास तक जोड़ तो कितना हुआ? इसलिए भागवत के प्रकाश होने से पहले व्यास जी का वो बहुत बहुत दिन पहले, कम से कम तो 250-150 वर्ष जरूर होगा, तो कृष्ण से पहले ये व्यास जी है। तो इसलिए उस समय व्यास जी ने देखा तब कृष्ण का आविर्भाव नहीं हुआ, तो इसलिए कहते हैं अपश्यत पुरुषम, नारद जी के उपदेश से भक्ति योग के द्वारा उन्होंने, कौन भक्ति योग? प्रेमा भक्ति योग के द्वारा कृष्ण की लीलाओं का देखा। अपश्यत पुरुषम पूर्ण, अपश्यत पुरुषम पूर्ण माने क्या? पूर्ण पुरुष को देखा, शक्ति समन्वय, वो भी शक्ति केवल नहीं, शक्ति का काय व्यूह, शक्ति का प्रकाश, उनके अंश, कला और नंद, वसुदेव, यशोदा देवी इत्यादि सारा ब्रज, ब्रजवासी, गाय, वत्स, गोवत्स इत्यादि सारी लीलाओं के साथ में उनको दर्शन किया। यह श्रीमद भागवत में जो लिखा गया, यह दिखलाना था किसको? व्यास जी को दिखलाया, व्यास जी देखा ये सब, देखा तब तो इसको लिखा भागवत, नहीं तो कैसे लिखते? इसलिए व्यास जी ने सर्वप्रथम ये कृष्ण की लीलाओं को दर्शन किया। मायांच तद अपाश्रयम, माया दो प्रकार की, जोग माया और एक, जोग माया का शुद्ध स्वरूप है श्रीमती राधिका जी, महामाया का स्वरूप है माया। कौन माया? जो कंस के हाथ से छूट करके अष्टभुजा दुर्गा हो गई, उसका मूल रूप कौन है? जसोदा की गर्भ से जो जोग माया निकली है उनका ये एक प्रकाश है, वो भी कौन प्रकाश? अपाश्रय, छाया प्रकाश। और व्यास जी ने इन सब चीजों को देखा, पूर्ण पुरुष को देखा, राधा जी का आश्रय कर, अब अपाश्रय का अर्थ संस्कृत से लगा लेना, अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायांच जोग मायांच स्वरूप शक्तिंच, उनको आश्रय करके, और महामाया अपाश्रित रूप में पीछे से लज्जित होकर के खड़ी। जोगमाया जो राधिका इत्यादि को देखा, उनकी क्रीड़ा करते हुए, उनके साथ में क्रीड़ा, विनोद इत्यादि, ये सब जो दशम स्कंद तक भ्रमर गीत इत्यादि जितने हैं सब उन लीलाओं को उन्होंने दर्शन किया, और दर्शन करके और माया उनके पीछे, जो जीव उनका भजन नहीं करता है वो जा रहा है, ये सब चीजों को पुरुष के रूप में देखा। यहां तक कि द्वार मथुरा द्वारका की लीलाओं का भी वो करते हुए उन्होंने देखा, और श्रीमद् भागवत में जिसका मैं अब पृथक पृथक रूप से उल्लेख नहीं कर रहा। अभी ब्रह्मचारी लोग यहाँ पर अभी पाठ करके श्याम सुंदर जी का भी नाम लिख लेना, दिल्ली से बड़े बड़े लोग सब आए हैं विद्वान लोग, उनका भी नाम लिख लेना, हमारे सुबल सखा जी ये सबका नाम जरा लिख लेना, शुभानंद जी और सब जो जो नाम बतलाया यहाँ पर रख देना, जैसे एक मिनट भी भागवत कथा बंद नहीं होगी। दोपहर में ब्रह्मचारी लोग सोएंगे नहीं, सोएंगे तो उसका फल अष्टमी का करने का वो सब निकल जाएगा उपवास, ये भी समझ लीजिए। जो जो सोएगा, खाने से तो कुछ चल जाएगा काम, तो सोने से गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सब भाई समझ लो, अने धोखा मत देना, अब धोखा हमको और भगवान को कौन देगा। इस तरह से आप व्रत का पालन कीजिए। मैं थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण इसे थक गया हूँ, अभी विश्राम लूंगा, फिर शाम को हम बैठेंगे, बीच बीच में आ जाएंगे। घी, दही, मधु, शक्कर, ये सब चीजें उपस्थित करना, हमारे ब्रह्मचारी लोग ये सब करेंगे, आप लोगों में भी जो है तो वो कर देना जैसा हो। और कल होगा सवेरे दधी कांदा। दधी कांदा माने क्या? दधी में हल लगा करके नंद बाबा के घर में जो आएगा उस पर छाप लगाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा तिलक लगा देंगे, और सभी लोग सज धज करके आएंगे, और उस समय में कौन कीर्तन होता है क्या, बधाई के कीर्तन होंगे, और नंद बाबा बैठ करके कुछ जो कुछ उनकी गाय बछड़े जितने थे और धन संपत्ति सारा सब कुछ लुटा देंगे। तो इतना लौट लुटाइए तो एक मन दूध इत्यादि या और कुछ लेकर के, या वो क्या होता है हल्का हल्का जो फेंक देते हैं, मखाना है, खेलने का सामान है, या आजकल मिठाई है, उसमें कुछ दे करके और सबको ऐसे बांट दिया जाएगा या थोड़ा सा दे दिया जाएगा। ये ठीक होगा करीब करीब 10:30 बजे 11 बजे। तो इसमें नंद बाबा कितने निकल आएंगे? 4-5, 2-1 किलो ये चाहिए क्या, मखाना, किशमिश, छुहाड़ा, बादाम, सूखा मेवा इत्यादि कुछ चाहिए, और कुछ खिलौने चाहिए छोटे 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 जो बच्चे सब दे करके ये होते हैं, ये सब चीजें हम लोग ले करके और सबको देंगे। बधाई का कीर्तन होगा और दोपहर में जो आएगा किसी को लौटाना नहीं है, जो आएगा उसको लौटाया नहीं जाएगा, और 12 बजे रात तक हम लोगों का ये दरवाजा खुला रहेगा। कल जो आएंगे सबको प्रसाद देंगे, नंद बाबा अपना सर्वस्व लुटा देंगे, और देवता लोग मनुष्य धारण करके रूप और उनका ये जन्म लीला को दर्शन करते हैं। गौर प्रमानंदे।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
वो जय जय देव सर्व सर्व उत्कर्ष के साथ में विद्यमान हूं, अतः तुम्हें भगवत्ता की चरम सीमा है, रस के समुद्र हैं, सबके दुखों को हरने वाले हैं, सबके बोल दिया जी के वो हमारे पास फन्ना से कोई नहीं है, कोई नहीं है, चुपचाप बैठ। सबके चित्त को हरण करने वाले हैं, सबको मन को हरण करने वाले हैं, इतने सुंदर रूप है, रस के समुद्र हैं कि सबके चित्त को हरण कर लेते हैं। जिसको जितनी ही भक्ति है उसके चित्त को अधिक हरण करने वाले ये जो है, ये कौन है? भगवत्ता की चरम सीमा है। ये कौन है? बजेंद्र नंदन श्याम जी, उनकी ये वंदना कर रहे हैं, क्योंकि सारा उनकी सारा गीत गोविंद उन्हीं के लिए है। तो श्रीत कमला, कमला मैंने यहाँ पर श्रीमती राधिका जी के श्रीत आश्रय लिए हुए हैं, सर्वशक्ति के आश्रय के बिना ये कुछ नहीं कर सकते, और ये रसग्रंथ लिखने जा रहे हैं, इसलिए कमला कुछ मंडल और शीत उसको धारण करके आश्रित है। कुंडल ए, हो सकता है कि वो राधा जी के चरण कमलों की कुमकुम को धारण कर रखा है, कानों में भी सर्वत्र धारण करते हैं, जैसे गोपियां धारण करती हैं कृष्ण के चरण कमलों की कुमकुम को, श्रीमद् भागवत इत्यादि में बतला गया, जैसे यहाँ पर कृष्णचंद्र ही उसको स्वयं धारण कर रहे हैं, जिनकी कथाओं का, जिनकी लीलाओं का, जिनके प्रेम की अपने प्रति कानों में कुंडल के रूप में धारण करने वाले जो हरि हैं, कलित ललित वन, कलित ललित वन कौन है? मालक को अभी जरा हटा दो। कलित ललित यह वृंदावन धाम, वृंदावन वन, वहां पर माल धारण करने में, माला मैंने वैजयंती माला, पंच रंगों की फूलों की पत्तियों की जो मालाएं हैं उसको धारण करने वाले नारायण करते हैं, धारण करते हैं, वृंदावन में रहते हैं न रामचंद्र करते हैं, न दूसरा कोई दूसरा हरि है जो धारण करता है, ये कौन धारण करने वाले? वृंदावन बिहारी राधाकांत राधा रमन श्री कृष्ण चंद्र ही इसको धारण करते हैं। और लक्ष्मी जी नारायण का चरण धारण करती हैं, नारायण लक्ष्मी जी को धारण नहीं करते, लक्ष्मी जी उनको धारण नहीं करती, उनके चरण को पलटती हैं दूर से। और श्रीमती राधिका जी क्या करती हैं? उनके आश्रय के बिना ये खड़े नहीं रह सकते, इसलिए उनके अंगों को धारण करके, श्रेष्ठ अंगों का धारण करके आश्रित रह करके ये खड़े रह सकते हैं या कोई लीला कर सकने वाले हैं। ऐसे जय जय जो दिव्यति क्रीड़ा करने वाले वृंदावन में हैं, ऐसे हरि को जय जय कार दे रहे हैं। दिनमणि मंडल मंडल और खंड नहीं, दिनमणि मंडल मंडल, दिनमणि माने क्या? यहाँ पर सूर्य मत लगाओ, क्या बोलो? मैंने बोल तो पूछी, दिनमणि मंडल मंडन, दिनमणि सूर्य है ना, तो यहाँ पर वृषभानु लगा दो किसी तरह से लगा दो। हम तो संस्कृत जानते हैं नहीं है, किंतु होगा, होगा कि नहीं? उनसे दधि के जैसे निकलते हैं ना विषभानु, दधि नव शशि लेखे, तो ये दिनमणि सूर्य हुए ना, तो सूर्य हुए विषभानु, विषभानु माने सूर्य, नहीं अब यहाँ पर हो गए वे विषभानु महाराज। मंडल माने उसके पूर्व के चारों तरफ में मंडन करने वाले जो हैं, कैसे ये राधिका जी वहां रहती है, वहां पर मंडराते रहते हैं, उसके बिना रह नहीं सकते ये। ऐसे भवखंडन, भव का अर्थ होता है, एक होता है दुख जन्म मरण, इनके एक तो वो साधारण अर्थ है और दूसरा अर्थ होगा क्या? पुनः पुनः जन्माना मरना, मैंने जो अंतिम दशम दशा है पुनः पुनः मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उसको खंडन करने वाले हैं अपने दर्शनों से। और ये भवखंडन तो ये साधारण अर्थ ही है, उनका कोई नाम ले कृष्ण का वो तो प्रेम मूर्छा विशेष, और ये साधारण अर्थ में भवखंडन। यदि कोई कृष्ण का एक नाम लेगा उसका जड़ मन सब कुछ दूर हो जाएगा, सारे ताप दूर हो जाएंगे, योगियों के नहीं होते, जितने योगी हैं उनके नहीं होते, उनको योगी को ज्ञानी को मुक्त होने पर भी उनको अपने कर्म फल जो प्रारब्ध कर्म है उसको भोगना पड़ेगा, और परिणाम करने वाले नामाभास होने पर भी प्रारब्ध कर्म भी होती देगा, उनका भव खंडन संपूर्ण। और मूर्छा वाला जो रोग है उनका तो वो भी अपने दर्शनों से दूर कर देते हैं। मुनिजन मानस हंस, मुनिजन माने यहाँ पर क्या रखना, श्रीमद्भागवत के वेणीगुत में इनका वर्णन किया गया है जिसे श्लोक में, अहो बतांग विहगा मुनयो वनस्मि, वहां पर सुखसारी कौन सूत, श्रीमती राधिका श्रिया सुक इत्यादि जो ऐसे जो मुनि लोग हैं, ये मुनि नहीं, ये लोग पक्षी नहीं, क्या है? किंतु इसका एक और तौर से समझ लेना, मुनि श्रेष्ठ है ना वृंदावन के, ये खग ये मृगकुल इत्यादि जो हैं ये श्रेष्ठ हैं, वहां की कोयल सुखसारी विचक्षण सुभा दक्ष इत्यादि ये श्रेष्ठ है ना, या विश्वामित्र और गौतम और बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हैं, ये लोग श्रेष्ठ हैं, उनसे लाखों करोड़ों गुना वो लोग श्रेष्ठ है। इसलिए ऐसे मुनि जन मानस हंस, ऐसे मुनियों के मानस में हंस के समान है। कौन? जय जय देव हरि। वो जो सुजंदर श्याम सुंदर हैं वो श्रेष्ठ है। कालीय विषधर कंजन जनरंजन ए, कालीय विषधर कंजन, कालीय जो विषधर था गंजन मैंने क्या होता है, गंजन मैंने क्या बोल पंडित रह, गंजन में क्या होता है, तुम उधर में बैठा, गंजन मैंने क्या, हमारी गंजना कर रहे हैं, बार बार हमें अपमानित इत्यादि कर रहे हैं, लांछित लांछन कर, यहां पर लांछन गाली विषधर के वो गंजन कर रहे हैं, लांछित कर रहे हैं, कैसे लांछित कर रहे हैं, उसे अपनी रक्षा नहीं कर रहे, उसे लांछित कर रहे हैं, हंसी मजाक जैसा कर रहे हैं। जब उसके फेटे में आ जाते हैं वो समझता है कि हमने उनको दबा दिया, और जब उसमें निकल करके उसके फनों को तोड़ने लगते हैं तो वो एकदम उनके वशीभूत हो जाता है, द्रवित हो जाता है। कैसे गंजन करते हैं, जितने ब्रजवासी हैं विशेष करके मैया माता पिता और विशेष करके अपनी प्रियाओं को सखियों को दिखला रहे हैं उस पर नृत्य, देखो मैं कितना सुंदर नृत्य करता हूं, ये उनका गंजन है। गंजन है जनरंजन, जनरंजन माने वृंदावन के जन जन है, ब्रजवासी जन, उनका सबका नहीं, कंस का मनोरंजन किया, अगासुर बकासुर इनका मनोरंजन नहीं किया, इले जो भक्त हैं उन्हीं का मनोरंजन करने वाले हैं, विशेष करके ब्रजवासी जैसे, हम जैसे तैसे के लिए नहीं। इसलिए जनरंजन ब्रजजन रंजन करने वाले जदुकुल ननी दिनेश, जदुकुल ननी दिनेश, जदुकुल रूप कमल के दिनेश माने क्या, जदुकुल माने जदु, जदु के बाद में उनके परंपरा में अजामिल राजा, अजामिल के दो पत्नियां उन्हीं की, तो एक क्षत्रियाणी और एक गोपी वैश्य गोपी देवमी, देवमीर की जो पत्नियां, तो देवमीर की दो पत्नियां एक गोपी से हुए परजंड महाराज और दूसरी से हुए सूरसेन, सूरसेन के बेटे हुए वसुदेव और वसुदेव के बेटे हुए कृष्ण, और उधर अजामिल से अजामिल नहीं परजन्य, परजन्य से नंद बाबा, नंद बाबा से ब्रजनंदन श्याम सुंदर, ये दोनों फिर जैसे एक से आए फिर दो हो गए, दो से मिल करके फिर उनके दिनेश, दिनेश मैंने उनकुल को जगत में प्रसिद्धि देने वाले सूर्य के समान जो दिनेश, ऐसे जो नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने वाले हैं वे जो दिव्यति क्रीड़ति ऐसे हरे, उनकी जय हो जय हो। मधुकर नरक विनाश मधुमूर, मधु मूर नरक ये असुरों का विनाश करने वाले हैं, वो तो एक हुआ मधुमूर नरक और दूसरे मधु संसार की आसक्ति को काटने वाले, मूर हृदय में जो काम है, क्योंकि मूर नाम का एक असुर था वो कृष्ण से ब्रह्मा इत्यादि से बर ले लिया था, हमको कोई मारे नहीं मार न सके और जिसके हृदय पर हाथ रख दूं वो मर जाए जल जाए, संसार में अजर अमर हो गया। एक समय वो अपना प्रतिद्वंदी खोज रहा था, तो नारद जी ने कहा भैया हम तुम्हारे प्रतिद्वंदी नहीं है, तुम चले जाओ उनके पास में, प्रभु के पास में। तो प्रभु के पास में भाई कहाँ रहते हैं, तो जहां चिंता करोगे वही मिल जाएंगे, तो उनकी चिंता करने लगा, वो भगवान प्रकट हो गए, बोले भाई तुम किसको खोज रहा, तो आपको किस लिए, लड़ने के लिए, लड़ने के लिए, तो तुम्हारा हृदय तो धक धक कर रहा, तो क्या लड़ेगा, पहले ही शायद हमको देख करके डर गया, अजय मैं तो नहीं डरा, नहीं धरा तो तुम्हारा हृदय जो थक थक कर रहा है तो कहां थक थक कर रहा है तो देखो तो जंग किया बस यह मूर्ख नरकासुर जिसने 16,000 स्त्रियों को कैद कर रखा था और समस्त भारत के राजाओं को हराकर उनका उत्पीड़न करता था वो नरकासुर था। वो जब बराह के रूप में पृथ्वी को उद्धार करने गए तो उनके पसीने से पैदा हुआ पृथ्वी का पुत्र कहलाता है यह नरकासुर। नरकासुर क्यों हुआ? भगवान से पैदा नहीं हुआ, सांब और प्रद्युम्न इत्यादि की भांति। वो कैसे? भगवान का मैल जिसको भगवान फेंक देंगे तो वो क्या होगा? मैल तो नरक ही चीज है, त्याज्य चीज है, इसलिए वो ऐसा होगा, फेंक दिया जाने वाला चीज। इसलिए नरकासुर इस सब का विनाश करने वाले, विशेष करके मधु बतलाया संसारी का आसक्ति नष्ट करने वाले, पूरे हृदय का काम इत्यादि को दूर करने वाले, कपटता इत्यादि का विनाश करने वाले और नरक, नरक माने क्या? पाप, समस्त प्रकार के पाप दूर करने वाले। कैसे? अपने नाम के आभार से ही। ऐसे जो गरुड़ आसन वासनाओं को दूर करने वाले, रामचंद्र का नोट इट एंड टेल टू वेस्टर्न डिवोटी, गरुड़ पर धार बैठने वाले और ब्रज में कैसा करने वाले, गरुड़ माने श्रीदान के कंधे पर बैठने वाले यीशु पर, कहां? गरुड़ गोविंद। ऐसे जो गोविंद हैं, सुरकल के लिंगदान, सुर सुर माने कौन? सिद्ध भक्त, यहां पर ये सुर नहीं बल्कि उनको भी साधारण अर्थ में लो। सुरकल सुरकुल के लिए निदान, सुरकुल के लिए क्या होगा? ये नहीं, सुर माने ब्रजवासी लोग जो कि सुर मुक्त पुरुषों से भी बहुत ऊपर हैं, के लिए निदान, के लिए पारायण जो हैं, ऐसे जो देव हैं, जय जय देव हरे, अमल कमल दल लोचन भव मोचन, अमल कमल दल लोचन, कमल के समान जी इनके नेत्र हैं। कमल के समान माने लाल के लिए नहीं कहा गया, लाल भी बड़े बड़े कोमल मृदु सुगंधी और थोड़ा सा ऊपर उठा उभरा हुआ कमल के जैसे उसके फूल के होते हैं, ऐसे उभरे हुए उनके नेत्र होते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी लालिमा होती है, ऐसे लोचन वाले भव मोचन संसार को। और वहां पर दूसरा जो बतलाया था वो मोचने त्रिभुवन भवन निदान, त्रिभुवन भवन तीनों भवनों के निदान है, आश्रय है, ऐसे जैसे हैं, जय जय देव हरि। जनक सुताकृत भूषण, विशेष अर्थ बतलाता जा रहा है, जनक सुताकृत भूषण, जनक सुता के भूषण है, जनक सुता जनक नंदिनी ये श्रीमती राधिका जी के प्रकाश हैं, उनके भूषण स्वरूप हैं। जित दूषण ये दूषणों को दूर करने वाले हैं, दोषों को पापों को अपने नाम के उच्चारण से आभास से दूर करने वाले हैं जित दूषण। और दूसरे रूप में जनक सुता कृत भूषण, वन में जब सीता जी गई राम गए तो उन्होंने वन में ये बीच बीच में उनका भूषण करती थी, अपने हाथों से फूल की मालाएं कर्ण भूषण इत्यादि लेकर के उनका भूषण करने वाली। जित दूषण है सीता जी के चोरी आने के पहले खर दूषण उनका विनाश करने वाले, समर समित दश कंठ ये अपने प्रकाश से स्वयं नहीं, इन्होंने अपने अंश से ही इनका संहार कर दिया, जय जय देव। एक कंठ नहीं बल्कि दस शीर वाला रावण को, अभिनव जलधर सुंदर धितमंदर, अभिनव जलधर सुंदर, अभिनव अत्यंत सुंदर कोमल नया नया जलधर मेघ जो होते हैं जैसे पानी को धारण करने वाले ऐसे सुंदर हैं। और धीतमंदर और कृष्ण उनका रंग ऐसा है ना, कृष्ण का मेघ श्याम होते हैं,
नवीन बादल
नवीन मेघ के समान। धीतमंदर और ये मान के पृथ्वी को समुद्र को मंथन के समय में एक अर्थ यह भी होगा, किंतु ये प्रधान अर्थ नहीं है। धीतमंदर गोवर्धन मंदिर को धारण करने वाले यहाँ पर गोवर्धन हो। धीतमंदर ये श्री मुख चंद्र चको श्री मुख राधा मुख चंद्र के चकोर है ये, जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणता वयमिति भावये, हम सभी आपके चरण में प्रणत, आप कृपया इसे ग्रहण करें। आप समझिए हम लोग आपके चरणों में प्रणत हैं। कुरकुशलम हमारा कुशल करें, कुशल करें माने क्या, हमको वैसी प्रेमा भक्ति दें, ब्रज की भक्ति दें। जय जय देव हरे, हम आपके चरण में प्रणत हैं, आप हमको ये प्रदान की। जय देव कवि इदम कुरुते मुदम, श्री जय देव कवि, यह अत्यंत सुंदर मनोहर और कृष्ण को प्रसन्न करने वाला समस्त मंगलों को देने वाला मधु ये गान कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, आप उन पर कहते 325 अच्छे चिंतामणि प्रकार स्वप्न सुपन।
तामणि प्रकर सदमस्फल परीक्षा लक्षण लक्ष्मी ेणुकणं कमरपिंदकलया
आदि गुरु, ये ब्रजलीला को लक्ष्य करके और विशेष करके अप्रकट ब्रजलीला नित्य ब्रजलीला को लक्ष्य करके ये सब चीजें करी गई है। Sutram has been done by Brahma. He has kept in his mind the aprakat braja, nitya Vrindavan braja, and keeping it drishti on that
reason,
he is telling all these slokas. चिंतामणि प्रखर सत्म सुकल्प वृक्ष, वृंदावन नित्य, ये वृंदावन भी नित्य ही है। किसी को भाई नींद ना आए, नींद नहीं आनी चाहिए, जरा तन करके बैठ जाओ, नींद नहीं आए। ये वृंदावन धाम देख रहे हैं, वृंदावन के तीन स्वरूप हैं। एक तो स्वरूप है नित्य, नित्य प्रकाशित अप्रकट, और अभी हम जिसको देख रहे हैं और जगत में जबकि वो प्रकट होते हैं कृष्ण चंद्र, उस समय उनके चरणों के स्पर्श से होता है प्रकट प्रकाश, अप्रकट प्रकाश और दृश्यमान। अभी जो हम देख रहे हैं दृश्यमान, अभी जन्मभूमि कैसी लग रही, कोई मनुष्य नहीं, जहां पर आदमी भरे पड़े रहते थे कारागार, केवल पुलिस जितने कंस के अनुचर हैं, गर्दभासुर अघासुर बकासुर जगाई मदाई भी आ गया होगा सब वहां पर, कोई बंदूक लेकर कोई कुछ लेकर के, जैसे कोई भी भक्त उसमें प्रवेश ना कर सके। असुरों की जो गदहियां हैं, सुअरों की जो सुअरियां हैं, उनके वो तो घुस रही हैं, किंतु कोई साधु संत पुरुष लोग उसमें नहीं घुस सकते। बड़ी पक्की कंस की व्यवस्था है वहां। तो ये क्या चीज है? ये दृश्यमान है। वृंदावन में जाएंगे कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, सुअर बंदर ये सब दिखाई पड़ेंगे, और गटकट्टे मिल जाएंगे, पंडे ऐसे मिलेंगे जो आपका सब कुछ ले लेंगे और श्रद्धा को नष्ट कर देंगे। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें साधुता तो नहीं है, कहेंगे हम भी सबसे बड़े साधु, भजन और हरि कथा नहीं है। अधिकांश लोग वृंदावन के इस दृश्यमान स्वरूप को देख करके वृंदावन दर्शन से वंचित रहते हैं और वो लौट जाते हैं बड़े दुखी और वृंदावन में नहीं है। किंतु आप लोग आशा मत करेंगे, दृश्यमान वृंदावन भी वही है जो प्रकट वृंदावन है, और प्रकट वृंदावन भी वही लोक वृंदावन वाला नित्य वो है, कुछ भी अंतर नहीं, बल्कि इसका कुछ वैशिष्ट है। इसको मायाबद्ध जी भी स्पर्श कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते। इसके स्पर्श से हम लोग उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको हम पहले स्पर्श ही नहीं कर सकते, इसलिए उसमें बहुत वैशिष्ट है। इसलिए उसको यहां से बतला रहे, वृंदावन कैसा है तो ऐसा है। लक्ष्मी सहस्त्र नारायण के धाम में एक लक्ष्मी, एक लक्ष्मी ने तीन लक्ष्मी ले, भू नीला और श्री, श्री भू नीला, श्री रुक्मिणी से, भू सत्यभामा से, नीला और दूसरों से, ये तीनों भी राधा जी के प्रकाश हैं। और यहां पर ब्रज में लाखों, एक दो नहीं, लैक्स एंड लैक्स लक्ष्मी कमला यहां पर है। उनके साथ में शिव्यमान ये लक्ष्मियां भी संभ्रम रूप में उनके बक्षस्थल पर चढ़ जाएंगे, ऐसी नहीं, संभ्रम रूप में ये देखते शिव्यमान, अथवा इसको कर दो ऐसे भी किसी तरह से अर्थ लगा लो यदि व्याकरण कोई है ऐसा, ये कृष्ण भी उन लक्ष्मियों को संभ्रम पूर्वक सेवा करते हैं, ऐसे भी कर सकते मैं उनका भजन करता हूं। वेणु पणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतंसम अशितम बुद सुंदरम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद। आज उनका आविर्भाव तिथि है, हम लोग उनका भजन कर रहे हैं। अलोल चंद्रक वनमाल्य वंशी रत्नांगदम, ये फूलों के सब समझो, वृंदावन में रत्न इत्यादि का व्यवहार कहां, गोपियों के चरण के नुपुर के लिए ही, फूल की मालाएं अंगद इत्यादि ये सब फूलों के होते हैं। प्रणय केली कला विलासम कोटि कोटि कंदर्प क्रीड़ा मुखे, ये पंडित हैं किला विलास ऐसे श्याम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम सर्वम। चलो अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय करेगा, और उनकी समस्त इंद्रिया देखेंगी, समस्त इंद्रिया चलेंगी, समस्त इंद्रियों से चिंतन करेंगे, उनकी सारी इंद्रियां सारे कार्य करेंगे, उनमें ये भी ऐसे जो गोविंद है आनंद चिन्ह में।
ब्रज में तो फिर ये लोकवत नहीं हुआ, ब्रज के कृष्ण ने ये बात मान ले तो लीला तो नहीं,
कैसे नहीं कर रहे हैं ना, उतना ही देखा नहीं, आंख तो बंद कर दिया, देखा नहीं, कैसे देखिया। और ऐसे ही सभी, यही तो उनकी अचिंत्य शक्ति है, उसके बल से सभी जानते हैं। बल्कि उस ऐश्वर्य भाव को भी अपने माधुर्य से ढक देते हैं।
जद भाव भावित धियो यास्तथैव संप्राप्य रूप महिमा सनयान भूषा सुप्तैव जमेव निगम प्रथितैः सुमन्ति गोविन्दमादि पुरुषं
करें। जद भाव भावित धियो मन जास उनके भक्तों ने जिस भावना से उनको विभावित होकर के भजन किया उसी रूप में उनको पाया। यशोदा जी ने पुत्र के रूप में पाया, वसुदेव जी ने देवकी जी ने ऐश्वर्य रूप अपने पुत्र के रूप में पाया, सखाओं ने सखा के रूप में पाया, अद्वैतवादियों ने ब्रह्म के रूप में पाया, ब्रह्मवादियों ने योगियों ने परमात्मा के रूप में पाया और गोपियों ने अपने प्रियतम के रूप में पाया। जिस रूप में जिन्होंने पाया उसी रूप में उनको संप्राप्त रूप महिमासन ज्ञान भूषा। चिंतन करते करते कृष्ण जैसा भावित किए, कृष्ण के परिकरों का जैसी विभावना की वैसे ही उसको प्राप्त हो गया। जैसे श्रुतियों ने गोपियों का रूप पाया वैसा ही आसन स्थान, वैसे ही महिमा, गोपियों जैसी महिमा, ज्ञान भूषा उनके भूषानुभूति इत्यादि जब गोपियों के प्राप्त हो गए, उस तरह से सखाओं का दूसरों का जिसने जैसी भावना की पीछे हमारे पाठ के बाद में कोई अभी कोई मत आना। जिस तरह से साधक भजन करेगा भजन के अनुरूप उसी का ऐसा ही रूप में होगा, ऐसा ही आसन माने स्थान और ऐसा ही ज्ञान, वैसा ही भूषण, वैसा ही रूप, वैसा ही नाम, संबंध वय नाम रूप पास वसन आज्ञा पराकाष्ठा श्वास ये इत्यादि एकादश भाव उसको प्राप्त होकर के ब्रज में उनकी प्राप्ति होगी। यदि साधक ये सब नहीं जानेगा तो फिर वो कैसे इन चीजों को प्राप्त कर सकता है? भाई जो सोएगा उसको उठा करके बाहर कर देंगे हम, जो सोएगा उसको उठा देंगे बाहर, इसलिए तन करके बैठो, जो कोई सोएगा उसको नाम करके खड़ा कर देंगे। तो जिस रूप में भाव यशोदा जी जैसे उनको क्रोध कर या बांधा तो उस बंधन में बंध गए। यशोदा जी उनको भय दिखला रही हैं, उन्हीं लीलाओं का चिंतन करते वैसे ही कृष्ण को गर्जन तर्जन करके उसको भय से उनको बांधेंगी अपने प्रेम की डोर से। भीति भय भीति इत्यादि बतला है अंत में। जब काम क्रोध काम सहज प्रणया दिभीति बासल्य मोह गुरु गौरव से प्रभाव, इसकी आगे अपेक्षा करें। इस प्रकार से भगवान का भजन हो, इसी प्रकार से चिंतन हो, जैसे कि हम लोग दिन रात चिंतन करते करते मरते समय वही चीज की चिंता रह जाए बस वैसी हो जाए। आज जो ऐसा नहीं करेगा, यहाँ बैठ करके यदि चिंता करेगा बद्रीनारायण जा रहा था मेरा बद्रीनारायण जाना अभी नहीं हुआ तो क्या होगा? कोई सोच रहा है कि घर हमको जाना है, घर की चिंता कर रहा है, कोई कुछ चिंता कर रहा है, कोई सो रहा है, विचित्रा जी सो रही है, वाह वाह सो मत नहीं खड़ा कर देंगे संप्राप्त। इस प्रकार से निगम इत्यादि ऐसा कहते हैं, निगम माने वेद इत्यादि भी ऐसा कहा गया है, इसलिए अष्टकालीय लीला बेकार नहीं है, वो हमारा आराध्य है, हमारा वही उद्देश्य है। यदि हम अपने साधन भजन में 50 वर्ष में 10 वर्ष में इन चीजों को नहीं जाना तो आदमी क्या करेगा? उस गुरु को ऐसे प्रणाम करके बायां रख कर या दाहिने हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा फिर हम इसी में रह जाएंगे। तो गुरु और चेला दोनों जाएंगे क्या जहन्नम में, जहां खुदा की कसम, खुदा की कसम कहते हैं। हम भजन करने के लिए अपना ये सर्वस्व दिया है, अपने जीवन के साथ में किसी से खिलवाड़ करने के लिए जीवन नहीं दिया है, इस चीज को याद रखना चाहिए। जो हमारे जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, हमको कठपुतली बना करके सांसारिक विषयों में लगा रहे हैं, नहीं, हम शुद्ध रूप में भजन कर रहे हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिधामिता भी साधी जयेव निज रूप तया सलामी गोलो उसी का जो अभी कहा उसी का ये प्रमाण है, उसी का ये प्रमाण है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी है, ये राधा जी के लिए बतलाया गया विशेष करके। ताभी जे एवं नूज रूप तय, ये गोपियां क्या हैं? राधा जी की काय पुरुष। ये राधा जी कौन है? अरे कृष्ण ही समझो, निज रूप तया कलाभी, कृष्ण के रूप ही के समान ये सच्चिदानंद स्वरूप। बल्कि कृष्ण को कौन प्रकाश करता है? स्वरूप शक्ति प्रकाश करती है। कृष्ण ऐसे नहीं प्रकाशित हो सकते थे, कभी संभव पर नहीं। इसलिए शक्ति की शक्ति शक्तिमान दोनों अभिन्न और एक ही हैं, तभी शक्ति की भी कुछ प्रधानता है, बिना उसका आश्रय लिए ये नहीं प्रकाशित हो सकते। तो जो जैसा वो चिंतन करके उनका भजन करेगा ठीक उसी रूप में उस स्थान को पाएगा, गोपियों का अनुगत्य उनको मिलेगी ब्रज में और उनकी उसी प्रकार से सेवा करने। इसलिए ऐसे जो कृष्ण हैं ऐसे गोपियों के साथ में राधा जी के साथ में सब समय क्रीड़ा करते हैं, उनकी जय हो जय हो। ये आदि पुरुष गोविंद हैं। प्रेमंजन छुरित श्याम सुंदर प्रेमंजन छुरित, कोई कोई भक्त प्रेम को अपना अंजन बनाकर सब समय अपने हृदय में उनको श्याम सुंदर के रूप में दर्शन करते, सभी नहीं देख रहे हैं। ऐसे गोविंद को मैं पुनः पुनः प्रणाम कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं। रामादि मूर्ति जस्य प्रभा प्रभावतो तद ब्रह्म अंतिम चलो। जंका क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह दुर्वशेद्य भावै संचिन्त तस्य तादृशी तनुरावेते गोविन्द मादिपुरुषम् तमाम। क्रोध, क्रोध से भी उनका भजन किया जा सकता है, विशेष करके उसके द्वारा कृष्ण अधिक रिझते हैं। जब गोपियां क्रोध कर बंकिम दृष्टि से क्रोध से थोड़ा उनको दुत्कार कर देती हैं तो वो कैसे प्रसन्न होते हैं, जब ब्रह्मा जी की स्तुति से नहीं होते। विशेष करके वो चोर न जाने क्या क्या करती हैं, ब्रज के प्रसिद्ध वो लंपट लंपट शिरोमणि इत्यादि कहती है, क्रोध से कहती हैं, और ये प्रसन्न होते हैं काम काम के द्वारा। सहज प्रणय, सहज प्रणय मैंने क्या अस्वाभाविक नहीं, सहज ही उनमें प्रणय आदि भीति भीति मैंने उनको डरा करके वात्सल्य के द्वारा मोह कृष्ण को ही मोह हो जाता है या उनको मोह होता है, दोनों को ही ले सकते हैं। दोनों का मोह माने क्या, यशोदा जी मोहित हो जाती हैं कि हमारे बेटे के मुख में ये ब्रह्मांड कहां से आया, या यशोदा जी उनको बांध देती हैं तो कृष्ण ही मोहित हो जाते हैं, उनके बंधन को कोई खोल नहीं पाता, नंद जी भी नहीं यशोदा कोई भी नहीं खोल पाता, ऐसे हो जाते। उस समय कृष्ण भी मोहित हो जाए मुग्ध हो जाते हैं और रोने लगते हैं, जानबूझ करके नहीं स्वाभाविक भाव से ही रोने लगते हैं। मोह गौरव, गौरव मैंने गौरव बात से, जैसे गर्गाचार्य इत्यादि वो वसुदेव इत्यादि गौरव भाव से गौरव आदि सिव्य भाव से उनका भजन करते हैं, जिस इनमें से किसी कोई भाव को ले लो उस प्रकार से चिंतन करके जब उनका भजन करता है तो वैसे ही वैसे शरीरों को धारण करके ब्रज में वैसे ही रूप आसन महिमा इत्यादि प्राप्त करके ब्रज में जा करके ऐसे गोविंद जी का भजन करता है, सेवा करता है। यहाँ पर भजन माने सेवा को प्राप्त होता है। ऐसे जो गोविंद आदि पुरुष हैं तम हम भजानी उनका मैं भजन नमामि नंदन नंदन नमामि नंदन पाठ करती हैं। इसके लिए राधिका जी इस श्लोकों को सुन करके प्रसन्न होती हैं, स्तोत्रों को कि प्रसन्नता से क्या होगा, कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण यदि उठ भी जाएं राधिका जी यदि प्रसन्न हैं, देव कृष्ण इज एंग्री बट श्रीमती राधिका इज सेवरबल देन नो हर इन अ सेकंड ही विल बी टर्न। इसलिए इनको हम कृष्ण की स्तुति तो करें किंतु राधिका जी प्रसन्न हो जाएं। इसलिए अब कृष्ण जी कैसे प्रसन्न होंगे, राधिका जी के कृपा कटाक्ष इत्यादि के स्तवों के द्वारा। मुनिन्द्र करने से जो कोई इसका पाठ करेगा विशेष करके पूर्णिमा के दिन अष्टमी के दिन एकादशी के दिन दशमी के दिन सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में या रात में विशेष करके ये यदि राधा कुंड के जल में घुटने पर जल कमर भर जल और नाभि तक के जल में अथवा गले तक के जल में खड़े होकर एक बार पाठ करें, यदि 100 करें तब तो कोई बात ही नहीं, 100 बार इसका पाठ करें प्रेम से आकुल होकर के चित्त को गदगद स्वर से यदि कोई पाठ करे तो क्या होगा, प्रजंत सुनु मंडल प्रवेशन, उसके सारे पाप तक तो ये कि तो कोई बात ही नहीं, ये तो होंगे ही, साथ साथ में प्रजंत सुनु ये जिनका हम लोग पाठ कर रहे हैं उनके मंडल में उनका सबसे बड़ा श्रेष्ठ मंडल क्या है, सखाओं का मंडल है, मैया माता पिता इत्यादि के मंडल है, गैया का मंडल है, बछड़ों का मंडल है, सबसे अधिक है सखियों का मंडल, रास मंडल है, रास मंडल से भेद राधा कुंड का मंडल और श्रेष्ठ है। तो ऐसे मंडल में ये प्रवेश करा देते हैं कौन, ये निश्चित रूप से। इसलिए ये राधा जी का स्वरूप समझो, राधा जी का स्वरूप है, जैसे राधा कुंड राधा जी का स्वरूप है, इसको भी ऐसे ही समझो, इसके ये फल है। तो कृष्ण हठात प्रकट हो जाएंगे और बोलेंगे वर मांगो, क्या चाहते हो, एकदम परम पुरोही करने लग जाएंगे, कहे नहीं प्रभु हम तो वर मांगने नहीं आए, तो यदि आप प्रसन्न होंगे तो क्या करेंगे, हाथ जोड़ करके उनसे यही मांगो,
श्याम सुंदर शिखंड शेखर मेरा समुरली मनोहर राधिका रसिक मन कृपा निधे स्वप्रिया चरण की प्राण नाथ विश्वानंदिनी जल सलोल षड पद राधिका पद तले कृति स्थिति रसिकेन्द्र से संविधाय दशने क्रीडन अर्थ गज महेन्द्र नंदन अस्तु मोहन कबा जन्मनी मदी श्याम सुंदर यदि आप प्रसन्न हैं श्याम सुंदर स्मेर हास मंद मुस्कान वाले मधुर मुस्कान वाले सुंदर शिखंड शेखर शिखंड अपने सिर पर मोर मुकुट को धारण करने वाले यदि आप प्रसन्न हैं तो क्या करें स्मेर हास मुरली राधिका रसिक राधिका के रसिका सौ प्रिया चरण किंकरी अपने प्रिया जी के चरणों की किंकरी बना दी जैसे रूप गोस्वामी जी ने कहा हा दे निका को भर गाचे निपत्र भोग दंड पत उठाती अश प्रसाद मधुदस्य जनस्त कृपा गंधर्वी के तो गणे गण यदि आप प्रसन्न है क्या करें अपनी गणों में दासों की अनुदासियों की दासी के दासी के रूप में या चैतन्य महाप्रभु करते हैं गोपी भरतु पदकमलयो गोपी भरतु इसका अर्थ क्या होगा कृष्ण के चरण कमलों का दास न क्या होगा ये गोपी शब्द यहां लगाया है जहां पर गोपीनाथ होंगे तो यहां पर गोपीनाथ मने राधा जी के साथ में है वहां पर कोई पुरुष का अधिकार नहीं वहां पर सखियों का अधिकार केवल तो गोपी भरतु पदकमल गोपियों के जो भरता अर्थात गोपियों के जो प्राणनाथ गोपीनाथ प्राणनाथ गोपी बल्लभ हैं उनके दासियों के दासियों की दासी की दासी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये अपने को ये समझो ये स्थूल अभिमान पूजा पूर्व इतिहास भूलि नु सकाओ सेवा सुख पे मन ये सब भूल जाओ जे मैं ये हूँ उनकी पत्नी हूँ उनका पति हूँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भूलो भूल करके ये अभिमान हृदय में हो इसलिए कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं श्याम सुंदर स्मेर हास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण प्राणनाथ विश्वभानु नंदिनी श्री मुखाब्ज रस लोल सटपथ अर्थात भवन के समान में अपने प्रिया जी का मुख आस्वादन करने वाले हे कृष्णा आप बड़े उदार हैं दाता शिरोमणि हैं बस यही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि राधा राधिका के चरण की सेवा पद तले कृति स्थिति मैं उनके चरणों की तलों में राधा कुंड में वास करती और आप जुगल किशोर की मैं सेवा इसका एक और कुछ नहीं चाहता इसके बाद में संविधा दशने तृणम अपने दांतों के तले तृण दबाकर गले में होकर के तीन ही तृण होकर के आपसे यही प्रार्थना करता हूं क्या जन्म जन्म में आपकी प्रिया जी राधिका जी की दासी की अनुदासियों की चरण की धूली में बन सके इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहिए ऐसी सब प्रार्थना सुखद होता बहुत छिलो अब बहुत देरी होगी 9 बजने जा रहा है अब हम भी उठेंगे इसलिए थोड़ा सा मामलों तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदाने कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमन्पेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो गिरः कातरया दिवा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो
संग सर्वभूत राधे विशेष रूप से
इस प्रकार का जन्म होता है किंतु इस वर्ष जयंती जो है आई थिंक क्या है
सोमवार
रोहिणी नक्षत्र जो होगा रात में अभिजीत मुहूर्त है और अष्टमी तिथि भादों का महीना कृष्ण के जन्म के समय में जो तिथियां थी वो प्राय समस्त तिथियां एक साथ में इस वर्ष में एकत्रित थी एक दुर्लभ योग है और इस दुर्लभ योग में आप लोग इस मथुरा में पधारे ये कम सौभाग्य की बात नहीं है और वृंदावन आप लोग हैं इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। ये कृष्ण हैं कौन वेद उपनिषद निगम आगम पुराण यामल सभी एक स्वर से कहते हैं कि ये परम ब्रह्म की परम तत्व की चरम सीमा है। श्रीमद्भागवत में इसीलिए कहा गया एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान। गीता में कहा गया मत्त परतरम नन्य किंचित अस्ति धन्य। अरे ब्रह्म ब्रह्म क्या करता है क्या ब्रह्म ब्रह्म करता है वो ब्रह्म तो उनकी अंग की छटा एक है वो कौन से अंग की मुखारविंद की चरणों की कनिष्ठ अंगुली की नख की चंद्रिका की छाया इसलिए ब्रह्मणो प्रतिष्ठा अहम ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा और क्या हूं शाश्वत अव्यय सत्य सुख शांति एकांतिकी इत्यादि सबका मैं मूल प्रतिष्ठा ये सारी चीजों का मैं परम तत्व स्पष्ट रूप से गीता में कहा इसलिए कहा सर्वधर्मानुप्रत्यजमाम एकम सर्व उपनिषदों में भी नारायणाय वासुदेवाय धीमहि इत्यादि कृष्णाय वसुदेव जी को के पुत्र को ही वेद लोग स्पर्श कर रहे हैं ब्रजेंद्र नंदन को तो वेद स्पर्श ही नहीं कर सकते इसलिए लोगों अंधे लोगों को ये वेदों में उपनिषदों में श्रुतियों में कृष्ण का नाम ही नहीं दिखाई पड़ता एतद् घोर अंगिरस कृष्णाय स्वाहा इत्यादि लिखा वेदों में उन उल्लू जैसे उल्लू पक्षी जैसे उल्लू होते हैं उनको दिन में दिखलाई सूर्य नहीं पड़ता ऐसे उन उल्लुओं को कृष्ण वेद में दिखाई नहीं पड़ते कुछ हमारे भारत के उल्लू लोग पहुंच गए थे वहां हॉलैंड में जब वेदों में कृष्ण का नाम है तो उल्लू को कैसा दिखाई पड़े तो हमने उनको दो चार ये सब सुनाए कहा जैसे इंडिया में आना तो तुमको वेद दिखला वेद तो देखा नहीं होगा हम वेद दिखला कर तो उसमें आपको दिखला दें किसी न किसी रूप में सर्वत्र ऐसा कोई शास्त्र भारतीय वाङ्मय नहीं है जिसमें कि उनका नाम नहीं है वेदों में उपनिषदों में सर्वत्र यहां तक कि इस रूप में लिखा है गोकुल में जो कृष्ण है ब्रज के जो कृष्ण है उनसे कोई दूसरे कृष्ण है जो मथुरा में जन्म लिए दूसरे कौन उनका वैभव प्रकाश जो मथुरा में उन्होंने जन्म लिया इसलिए कृष्ण का आंशिक रूप में यहां पर जन्म है और पूर्ण रूप से जन्म कहा है गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ से एकदम स्पष्ट रूप में सर्वत्र लिखा गया आनंदमय और अभ्यासा वेदांत का जो अंतिम श्लोक है आनंदमय आनंदमय का अभ्यास करो, भजन करो पुनः पुनः। ब्रह्मा आनंदमय हो सकता है, वही ब्रह्म यदि है तो आनंदमय होगा, नहीं तो जिसका रूप नहीं है, शकल नहीं है, सूरत नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है, जो जीरो है, शून्य है, वो आनंदमय कैसे होगा, उसका अभ्यास क्या होगा? एकदम संपूर्ण रूप से उसको तो कोई गुण नहीं है, आपको कोई दुख कष्ट हो रहा है उसको पता ही नहीं है, वो आपका क्या कल्याण कर सकता है? वो तो एक शरीर धारण भी नहीं करता, ठूठा ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म के लिए उन्हीं को अभ्यास आ, कोई कहता है उनका रूप नहीं है, रूप नहीं है, और रूपवत एवही तत्प्रधानत्वात्, माने क्या वो रूपवत नहीं है, न रूपवत रूप है, उसका रूप है, ये गलत है, उसका रूप है, अरे वो रूप स्वरूप एकदम स्वयं रूप स्वरूप है, वो स्वयं वो विग्रह स्वरूप है, और रूपवत नहीं है। इसी में चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती के तर्क वितर्कों का खंडन करके वहां पर कृष्ण का रूप स्थापित कर दिया, और वहीं पर यह गोविंद जी ही पर सब बतलाया। किस लिए जगत में पधारे? पधारे किस लिए जगत में? जगत में तो सर्वत्र ही है, अणु अणु में है, किंतु प्रकट रूप किस लिए रूप हुए? बहुत से कारण है, एक दो कारण नहीं, जिसमें साधारण रूप में मुख्य और गौण दो कारण बतलाए जाते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की संस्थापन करने के लिए, धर्म को दूर करने के लिए, दुष्कृत जनों का विनाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए जगत में प्रकट हुए। एक तो ये गौण कारण है। ब्रह्मा इत्यादि गौ को साथ में लेकर के फिर समुद्र में उनकी आराधना की, जब पृथ्वी पर बहुत भयंकर क्या भार हो गया है, आप उतारिए नहीं तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ये भी कारण है, किंतु ये गौण कारण है। क्यों? ये तो अपने अंश के द्वारा महाविष्णु विष्णु गर्भोदशाई के द्वारा ये सब काम करा सकते हैं, गर्भोदशाई विष्णु के द्वारा फिर सही उनके अवतारों के द्वारा ये सब काम सहज हो जाए। युग धर्म की प्रतिष्ठा, कंस को मारने के लिए कृष्ण को आने की जरूरत नहीं, ये तो महाविष्णु इत्यादि के द्वारा ही उनका सही रूप में वध किया जा सकता है, लोक आभार दूर किया जा सकता है। किस लिए आए? भक्त विनोदान विनोदाय, कृष्ण अपने भक्तों का विनोदन करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधु नाम, मैंने साधारण जो साधक है उनके लिए यही लग सकते हैं, प्रहलाद इत्यादि को कष्ट को दूर करने के लिए जैसे आते हैं, कंस के अत्याचार से बचाने के लिए आए, किंतु ये भी गौण अर्थ है। फिर आगे और जब पढ़ेंगे, अपने भक्तों के वचन को पूर्ण करने के लिए क्या है वो? सत्यादि भाषिता, और भक्तों के लिए आए। इन भक्तों में कौन? कश्यप और अदिति को लीजिए। कश्यप और अदिति लाखों वर्ष तक अपने अंगूठों को सिर पर रखकर और नख के केवल बल पर हजारों वर्ष बिना खाए पिए तपस्या की, तब भगवान उनके सामने आए। आज एक उपवास है ना, वो तो हजारों लाख वर्ष तक ऊपर रखकर के अपने नख के बल पर केवल सारे शरीर को खड़ा कर दिया, खाया पिया नहीं, हवा भी बंद कर दिया लाख वर्ष। और मैं समझता हूं अभी तक हम लोगों में से कितने आदमियों ने हम लोगों ने पानी पी लिया होगा, पी लिया होगा पानी पी लिया होगा, अने तभी महाराज जी आगे कब तक बैठेंगे न जाने है? कितना बज गया? सवा आठ बज गया, महाराज जी भी उठ नहीं रहे, कब जाते तभी जलपान होता, पानी पी लेते, और लाख वर्ष वो करते थे, और तब लाख वर्ष के बाद में उनको एक झलक के लिए दर्शन दिया, और आप लोगों को ऐसे ही दे दें, आप लोगों के माने देने के लिए बैठे हुए उपवास, अंततः
जब तक उनका जन्म नहीं होता है तब तक उपवास करो, यदि भगवान सचमुच में तुम उपवास करना चाहते। उपवास केवल नहीं खाने से ही नहीं होगा, भोजन का बंद करने से नहीं होगा, उन चित्त से भी उनके समीप बैठो, अपने सारी इंद्रियों को कृष्ण के निकट ले जाओ। कैसे होगा? संकीर्तन श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सारी इंद्रियों के द्वारा उनके लगा दो, तब उपवास। अथवा मंदिर में वास भगवान के समीप तुलसी के तले जमुना के किनारे निकट में वास करने से उपवास होता, क्यों न तो उल्लंघन, केवल उल्लंघन से नहीं होगा। आज देखूंगा मैं, सबसे पूछूंगा एक एक आदमी से, ब्रह्मचारियों से भी पूछूंगा, आज 12 बजे तक कौन उपवास किया? इसमें महिलाएं किंतु आगे बढ़ जाएंगी, वो हम कहेंगे ये पानी पी लो तभी नहीं पिएंगी, ये लोग कल सूर्योदय के बाद में ये अनुकल्प पारण करेंगे, इधर नहीं करेंगे, किंतु पुरुष में सब लोग पिछड़ जाएंगे, बहुत कम ही होंगे, किंतु तुम लोग चेष्टा करो। ये कहां तक रह सकता है? आज मेघ भी हो रहा है, आज वर्षा हो रही है, दिन सुहावना है, विशेष करके हमको मोटे लोगों का भय है जो वो अभी तक पानी पी न लिए हो, पतले दुबले वाले जो है ना या वो है वो तो कर लेंगे किसी तरह से, दुबले तो उनके लिए जरा डर है, इसलिए खूब सावधानी से रहना। यदि संकल्प कर लो जो हम नहीं पानी पिएंगे तो वो प्यासी नहीं जाएंगे, इसलिए रात में 12 बजे ठाकुर का जन्म होगा चरणामृत लेकर के, तो अभी चावल अन्न और ये कोई पराठा इत्यादि बाजार में आप ये जाकर के मत खा लेना, यहाँ पर तो मिलेगा नहीं किंतु बाहर में ये सब मिल सकता है, वहां पर भी जाकर के मत खाना। आज अनकल्प यहाँ पर थोड़ा सा जो मिल जाएगा कर लेना, और जो नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है, कल छोड़ेंगे। कल में भी एक बात है, दो प्रकार के विचार है, एक तिथि के अंत में पारण होता और एक होता है नक्षत्र के। तिथि के यदि हम करेंगे नक्षत्र तो रोहिणी नक्षत्र के बाद में पारण करना होगा, और रोहिणी नक्षत्र 4 बजे शाम तक है तो तब तक के लिए उपवास रहना होगा, तब तक उपवास रहना है। 4 बजे शाम के बाद में पानी कुछ ले सकते हैं या कोई चीज, कल। और दूसरी बात, यदि ऐसा नहीं है तो भगवान कृपा कर देते हैं, एक तिथि जोग से कर देते हैं, अष्टमी तिथि आज लग गई है रात में ही, इसलिए अष्टमी तिथि रात में 12 बजे के बाद में ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए सवेरे सूर्योदय के बाद में आप तिथि जो के अंत में अर्थात सूर्योदय के बाद में 6 बजे 9:39 के पहले ही ठाकुर जी का भोग लगा करके आप लोग कुछ कर लें। कल स्वामी जी का भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी हमारे गुरु भाई और हमारे शिक्षा गुरु दो नाते और एक मित्र तीन नाते, और एक तरह से उनका कहना नहीं चाहिए एक उनका भी शिक्षा गुरु, क्योंकि मैंने उनको संन्यास दिलाया ना, मैंने उनको संन्यास दिलाया, उनको धोती पहनाया, मैंने संन्यास का वो पहनाया और दंड लेना सिखाया उनको, तो कौन गुरु हुआ? कितने नाते उनके साथ में, किंतु फिर भी मैं अपना शिक्षा गुरु उनको मानता हूं।